राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवं प्राप्तो यत्कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विद्यै राधे ह्यूस्टन में मैंने पाठ किया भागवत का। पांच दिन का भागवत था या चार, पांच दिन, दो दिन किया और बाकी तीन दिन दशम स्कंद के संबंध में बोला। नहीं सुनाई पड़ता? वहां पर हमने पाठ किया इस श्लोक का, पुण्यावत ब्रज भुवो जयदैन नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य गा पालयन सहबल कणयन वेणु दिक्रियांचति गिरित रमार्चितांग्रि गुप्तस्तप किम आचरण जदमुष्ण रूप लावण्य सार समुद्रनंद त्रिग्धि पिबंत अनुसवम अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम जसस प्रिय ऐश्वर्य जादो हने वहनने मथलोक लोक प्रेंखाखनाभि उदितो उखन मार्जनाद गायंत चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठा धन्ना ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त ज्ञान। मथुरा में कृष्ण बलदेव जी आए हुए हैं, यहीं रंगेश्वर के मंदिर के पास में रंगशाला बनी हुई है। कंस का विचार यह था कि किसी प्रकार से कृष्ण को ब्रज से निकाल करके मथुरा में लाएं और सभी मिलकर के उसे मार डालें। चारुण और मुष्टिक से कृष्ण और बलदेव जी भिड़े हुए हैं। कहां पर्वत के समान ये दोनों असुर और कहां ये छोटे से मधुर कोमल शरीर वाले कृष्ण और बलदेव। युद्ध देख करके कृष्ण का रोष भरा हुआ चेहरा तमतमाया हुआ देख करके और बलदेव जी का, वहां जादुओं की जो पत्नियां थीं वो कुछ बिगड़कर क्रोधित होकर के कहने लगी, इस सभा को अधर्म ने स्पर्श किया है, इस सभा में जो रहेगा उसी को अधर्म लगेगा, यह अधर्म की सभा है। कहां छोटे छोटे दो सुकुमार बच्चे और कहां ये यम के दूत के समान, ये भयंकर भयंकर काल के समान, और दोनों के साथ में इनका युद्ध हो रहा है। ये केवल खिलवाड़ नहीं है, मनोरंजन नहीं है, ये इनको मारने का ये षड्यंत्र है। उस समय में उनको कृष्ण ब्रज में कैसे सुंदर कैसे मधुर हैं और गोपियां धन्य हैं जो कृष्ण के उस रूप को देखती हैं, और हम मथुरावासी पुरुष और नर नारी बड़े दुर्भागा हैं जो कृष्ण को इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं। एक सिंह साव को वन से पकड़कर सर्कस के खांचे में लाया जाए या चिड़ियाघर में उसको बंद कर दिया जाए लोहे के सिकंजे में, उसी तरह से आज ये कृष्ण और बलदेव जी की स्थिति में हम लोग इनको देख रहे हैं। पुण्यावत ब्रज भोजद अयं नृलिंग। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, अथ काश्चित् यज्ञपत्नी सबासना ता एव तद्व्याप्ति। ये जो जागों की पत्नियां स्त्रियां जो कह रही हैं, इनको ऐसे समझो जे इनकी जो वासना है यज्ञ पत्नियों के समान है। यज्ञ पत्नियों का क्या है? कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनके सखा लोग भूखे हैं, ब्राह्मणों से उन्होंने मंगवाया, जाओ भोजन मांग लाओ, उन लोगों ने नहीं दिया, फिर यज्ञ पत्नियों के पास में भोजा, ब्राह्मण पत्नियों के पास में, और वो भर भर थाल लेकर कृष्ण को दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उनको जनेऊ नहीं, वेद उपनिषद और वेदांत में जिनका अधिकार नहीं, उनकी रुचि ही नहीं अधिकार की, तो बात क्या, रुचि ही नहीं। यज्ञ पवित्र नहीं है, साथ साथ में कब अपवित्र भी हो जाती हैं, और वो भगवान को भोजन कराने के लिए वहां पर चल पड़ी, और कुछ को लोगों ने घर के अंदर में बंद कर दिया। वो अपने शरीर को छोड़ करके वो पहले ही जा करके उनसे मिल चुकी, और जो बाकी रही वो चल पड़ी, कृष्ण को दर्शन किया, ठगी सी रह गई। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह धातु प्रवाल विन्नस्त हस्त इतरेण धुनान मब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्ज। कृष्ण को देखा, श्यामं हिरण्य परिधिम, श्याम कृष्ण का शरीर, और उस पर मेघ विद्युत जैसी तड़ित प्रभा, पीतांबर, कानों में फूल लगे हुए, परम सुंदर शोभनीय, बच्चे चारों तरफ में कृष्ण के साथ में हैं, परम मनोहर मधुर रूप उनका देख करके लुप्त हो गई। कृष्ण के आगे सब निवेदन कर दिया। निवेदन करने के बाद में कृष्ण ने कहा, जब अपने हमारा दर्शन हो गया, पतियों के पास में घर में चले जाओ। उन्होंने कहा जे हम कैसे जाएं, मन तो हमारा यहां रह गया, जाकर के हम क्या करेंगे, पैर हमारा चल नहीं रहा, हम जा नहीं पाते, और जाकर के करेंगे भी कहां, मन तो यहां रह गया, जाकर के क्या करेंगे, अब हम नहीं जाना चाहेंगे, हमारे पति नहीं ग्रहण करेंगे, हमारी मैया सास ससुर भाई बंधु समाज का कोई भी व्यक्ति अब हमें नहीं अंगीकार करेगा, इसलिए अब हम जाकर के क्या करेंगे। कृष्ण ने कहा, घर में जाओ, सभी तुम्हारी पूजा करेंगे और सभी सम्मान करके तुम्हें रखेंगे, और उन्होंने जोग माया के प्रभाव से उनको किस प्रकार से समझा बुझा करके विदा कर दिया। वो कृष्ण को भगवान के रूप में देखती हैं, ऐश्वर्य भाव से देखती हैं, ये कृष्ण कौन है। नंद बाबा के लाला होने पर भी ये लाला नहीं है, यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, ये क्या है, ये स्वयं भगवान है। नहीं होते तो पुतना अगासुर बकासुर इनको नहीं मार पाते, और दवानल का जो आग थी उसको पान नहीं कर सकते थे, और काली ह्रद में डूबकर और काली ह्रद को शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए ये भगवान है। एक तो ब्राह्मण वंश में थी और उनको भगवान जानती थी, कृष्ण ने उनको लौटा दिया, उनके पति ने उनको आदर किया। धिक्कार है हमारे जनेऊ को, धिक्कार है हमारे तीन जन्मों की, शुक्र जन्म, सावित्र जन्म और दैत्य जन्म, तीनों को धिक्कार है। हम लोगों ने इतना किया, यज्ञ किया, तपस्या किया, व्रत करते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम उनको कुछ भोजन नहीं दे सके, उनसे बात नहीं कर सके, उनका दर्शन नहीं कर सके, और ये गुआरी कुछ जानने वाली नहीं, सब समय अपवित्र रहने वाली, वेद का अध्ययन नहीं कर सकने वाली, यज्ञ करने में अधिकार नहीं, और इन लोगों ने भगवान को पा लिया और बड़े प्रेम के साथ में पाया, और हम लोगों को धिक्कार है ये विद्या बुद्धि सबका। तो वो लौट गई घर में और फिर साधन भजन करने लगी। क्यों नहीं मिला कृष्ण, क्यों नहीं मिले, उनको लौटा क्यों दिया? माधुर्य की बुद्धि नहीं थी अभी, कृष्ण स्वयं अभी भगवान है, ऐसी बुद्धि उनमें है, ब्राह्मण कुल में जन्मी है, ब्राह्मण का अभिमान भी कुछ है, इसलिए बहुत कुछ उसमें दोष है, इसलिए कृष्ण ने उनको ग्रहण नहीं किया। उनको जैसे माँ बेटी होती है, माँ के समान उनको लौटा दिया। किंतु उनकी भावना थी कैसी, कुछ कुछ गोपियों जैसी उनकी भावना थी, उसमें कुछ काम का गंध भी था, कामात्मिका का गंध भी है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं था। हो सकता है कि दूसरे जन्म में कृष्ण ने इसी उस समय में लौटा दिया, दूसरे जन्म में फिर ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेकर के फिर उनकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु उस समय उनको लौटा दिया। तो वैसे ही इनमें स्ववासना, देखो भजन में वासना प्रधान होती है, कृष्ण सेवा की वासना ही भक्ति का, भक्ति लता का मूल है ना? श्रद्धा नहीं, श्रद्धा उसका बाहरी लक्षण है, बाहरी लक्षण है उसका, लक्षण उसका मूल क्या है, भक्ति लता का बीज है। वैष्णव के संग में रहने से धीरे 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 कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है, साधु संग में यही होता है, श्रद्धा जन्म मूल है साधु संग। साधु संग में यदि कृष्ण को सेवा करने की वासना आए, ये मैं कृष्ण की सेवा करूंगी, यहां पर कृष्ण से कृष्ण ही मत समझो, कृष्ण से उनके परिकर विशेष करके सभी गोपियां राधा जी इत्यादि सभी को समझो, यशोदा मैया, नंद बाबा, सुबल, सिद्धांत, ब्रज के जितने हैं, या राम का भी ले लो, वो सभी को इसमें इंक्लूड करो। तो कृष्ण सेवा की वासना, राधा कृष्ण की सेवा की वासना, कृष्ण परिकरों के साथ में जब है उनकी सेवा की वासना, ये जन्म लेती है कृष्ण का सेवा करो। अब कृष्ण सेवा करने के लिए घर अनुकूल नहीं पड़ता, सब लोग घर छोड़ करके चले आए, समाज छोड़ दिया, किसी ने और पुरानी रीतियां छोड़ करके वैष्णवों का भाव ग्रहण करके तिलक माला कंठी लेकर के मंत्र लेकर के भजन कर रहे हैं उसी वासना के लिए। जहीं वो वासना हृदय में पहुंचती है तब कैसे मिले, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे उनकी सेवा मिलेगी, उसके लिए तब फिर कभी कभी कोई घर छोड़ देता है साधु संग। मैं दिन भर रात भर रहूंगा वैष्णवों के संग में और उनसे शिक्षा लाभ करके, और मैं भी वैसे ही मैं भगवान की सेवा करूं, जब इतना भाव आने लगता है तो उसमें से बाहर से श्रद्धा दिखाई देती है। श्रद्धा कैसे दिखाई देती है? प्रणाम करते हैं। तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन, ये तीनों चीजें बाहर से दिखती है। वो जो कृष्ण सेवा की वासना दिखाई नहीं पड़ती, उसका अनुभव किया जा सकता है, वो दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ेगी क्या? श्रद्धा, जब बार बार भक्तों को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, कथा को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ये तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के सामने प्रणिपात करते हैं, गुरु जी यही देहामी समर्पिलाम तुम्हारे। कौन कहा? महाप्रभु गया में जाकर के कहते हैं कि यह शरीर मैंने आपको समर्पण कर दिया, अब ये मेरा नहीं रहा। शरीर माने इसमें रहने वाला शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, जो कुछ हमारा इंद्रिय है, सब कुछ अब ये सब आपका हो गया। अब तुम हमें कृष्ण को हमको प्रदान करो, जो कुछ करना है नहीं करना है अब आपको समर्पण कर दिया। वैसे ही गुरु के चरणों में समर्पण करता है, किस लिए? सेवा की वासना को पुष्ट करने के लिए। जे कैसे मिली? अभी तो वासना हुई है, पानी पीने की इच्छा हुई, पानी नहीं मिला, पानी कैसे मिलेगा? इसके लिए गुरु रास्ता बतलाएगा, जे ऐसे चलो, यहां से सीधे चले जाओ और जाकर के विश्राम घाट कहीं लिखा होगा, वहीं के नीचे में यमुना जी बह रही हैं, वहीं पर तुमको पानी मिलेगा, भर पेट पी लेगा। ये तरीका है। तो इसको कौन बतलाएगा? जिसने पानी पिया है, यमुना तक गए हैं, वही तो बतलाएगा। ऐसे जिसको कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा करने की वासना पूरी हो गई है या पूरी होने जा रही है, वो हमको रास्ता दिखाएगा, तब फिर साधन भजन चलेगा। तो प्रणिपात पहले। अब मेरी कोई अपनी बुद्धि नहीं रह गई, अब अपने मन से नहीं चलूंगा, आपके मन से चलूंगा। परिप्रश्न करेगा, समझ में नहीं आया, प्रश्न करेगा। और सेवा, ये तीनों चीजों बाहर से दिख पड़ती है। जब प्रश्न करेंगे ये भी बाहर से सुनाई पड़ती है, दिख पड़ती है। सेवा करते हैं वो भी दिखाई पड़ेगा, प्रणाम कर रहे हैं ये भी दिख पड़ेगा। वो वासना नहीं, किंतु कर रहे हैं किस लिए? उस वासना की पूर्ति के लिए। यही वासना साधु संघ में पुष्ट होने पर और गुरु पदाश्रय करता है। गुरु पदाश्रय, पदाश्रय मैंने क्या? गुरु के आचरण कमल ही हमारा एकमात्र आश्रय है, ये पदाश्रय। तब वो दीक्षा मंत्र इत्यादि देकर के बढ़ाते हैं, तब वो धीरे 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 निष्ठा, रुचि, आसक्ति रूप में बढ़ करके जाती है। तो ये वासना भजन राज्य में बहुत उन्नत है। अपनी वासना को अपने गुरु के की वासना के अनुरूप मिलाना होगा, बराबर करना, ये सब वासना है। और सबसे प्रधान क्या है? जिनकी सेवा के प्रति हमारे हमारी क्या हो गई है? लोभ हुआ है। जिसके सेवा के प्रति, कौन? मैया, जैसे मैं कृष्ण का लालन पालन करूं। जसोदा मैया की जो वासना है, उसके वासना के समान अपनी वासना को हम बराबर करेंगे, इसको कहते हैं सवासना। जी गोस्वामी ने प्रति संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से इसको किया, इसको सवासना कहते हैं। भजन राज्य में इसकी बहुत जरूरत है, इसीलिए ये तो साधन भजन और गुरु करण और साधु और संतों का संग करना। तो हम जिसके प्रति हमारी लुब्ध है, हमारा चित्त लुब्ध है, सुदाम और सिदाम, सुबल, मधुमंगल की तरह मैं कृष्ण के साथ में गैया चराऊंगा, और वो कृष्ण कहते हैं कि जाओ तो गैयों को लौटाओ, बड़े बड़े आनंद से नाचता हुआ कूदता हुआ चला जाऊंगा, उनके आदेश को पालन करता हूं, लाऊंगा। और कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के कहेंगे वाह, गैयों को लाया, बस गले में हाथ दे दे। हम ऐसी ही सेवा चाहेंगे, कोई गोपियों जैसी सेवा चाहेगा। ये वासना है, ये वासना को उनके बराबर करने से वो वासना हृदय में जब आती है तो उसी को कहते हैं विशुद्ध। ये विशुद्ध सत्व आने पर शांति, रव्यर्थ काल, तंग विरक्ति, मानस, अन्यता, आशा बंदर समुद्र कंठा नाम गाने, ये सब लक्षण होंगे। ऐसे व्यक्ति को जो सवासना वैसी वासना, उनको कोई फुर्सत है दिन भर रात भर में किसी चीज के लिए, किसी दूसरे काम के लिए कोई भी समय नहीं है, और इसीलिए हम लोगों को नहीं हो रहा, क्योंकि हमको बहुत फुर्सत है ये सब काम में। और जिन लोगों को कुछ नहीं है वो सवासना में लगे हुए हैं, कैसे मिलेगा, कुथा जाऊं, कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र में, कहीं इसकी तो एक आभास भी हम लोगों के हृदय में नहीं जाए। ऐसे व्यक्ति को कोई समस्या है, बस समस्या एक है, कृष्ण कैसे मिले, दूसरी कोई समस्या ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है ये शरीर है कि नहीं है। ये जो गोपियां, ये जो हैं, ये मथुरा की जादुओं की स्त्रियां, इनकी वासना कैसी है, कृष्ण में ऐश्वर्य बुद्धि है, इसलिए ये मथुरा है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों साथ चलते हैं, बिना ऐश्वर्य का माधुर्य नहीं, बिना माधुर्य का ऐश्वर्य नहीं रहे। माधुर्य ऐश्वर्य हो या न हो, मनुष्यचित नर लीला के अनुरूप में जिनकी लीलाएं होती हैं उनको कहते हैं माधुर्य। कृष्ण में भगवत्ता जरूर रहेगी, नहीं गोवर्धन को उठा लेना यह सहज नहीं है, यह ऐश्वर्य है। तो नरलीला में नरलीला का अनुरूप हो, कृष्ण छोटे बच्चे होकर के हाथ में बंसी लिए हुए मुस्कुराते हुए मोर पंख धारण किए हुए लकुटी लिए हुए और गोवर्धन को कानी से उठा लिया, ऐश्वर्य होने पर यह माधुर्य लीला है। और वहां द्वारका में या मथुरा में किलकारी मार करके रो रहे हैं कृष्ण, चतुर्भुज से द्विभुज हो गए और रोने लगे, हाथ पैर उठाने लगे, रोने लगे, कभी पैर का अंगूठा मुख में दे दिया, ये क्या है माधुर्य। अभी एक मिनट पहले था ऐश्वर्य और हो गया क्या, ये माधुर्य में ऐश्वर्य। बिना ऐश्वर्य के माधुर्य रहेगा ये केवल मनुष्यता है, उसमें भक्ति तक्ति और कुछ नहीं है, इसलिए ऐश्वर्य जरूर रहेगा। ऐसा मत समझना कि ऐश्वर्य रहित मनुष्योचित भाव नर लीला के अनुरूप रहने से ही माधुर्य होता है, ऐसा नहीं, यह गलत विचार। ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहते हुए भी नर लीला का अतिक्रम नहीं करके उनकी जो लीलाएं होती हैं उसको कहते हैं माधुर्य लीला। यहां पर मथुरा में उस समय में कृष्ण लड़ रहे हैं और उनको ये भान है, अभी अघासुर को बकासुर को सबको मारा, ये इनको मारेंगे, ये भी भाव है, इनको कोई मार नहीं सकता, ये भी उनको ये ज्ञान है, यह ज्ञान ही ऐश्वर्य ज्ञान है। नारद जी ब्रज में आएंगे किंतु उनका भाव क्या रहेगा, ऐश्वर्य भाव रहेगा, ऐश्वर्य प्राप्त है। यशोदा जी के गोदी में देख रही हैं और यशोदा जी गोदी से रख दिया, कृष्ण रो रहे हैं, मैया दूध पीऊंगा मैं, मैया मैया कर रहे हैं और जमीन में लौट रहे हैं, जो सौदारी कर रही है, नहीं तुमको गोदी नहीं चढ़ाऊ, ये क्या है। नारद जी देख रहे हैं, अरे ये पर ब्रह्म साक्षात जो सौदा तने कौन सा तप किया, जप किया, तीर्थों में स्नान किया, दान किया, जो आज ये पर ब्रह्म तुम्हारी गोदी में चढ़ने के लिए ललक रहे हैं। नारद जी का क्या भाव रहा, देख रहे हैं बेटे के रूप में, ललके के रूप में, किंतु है ऐसा भाव। ऐसे ही इनका कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण वही हैं जो अभी मथुरा से अभी आए, वृंदावन से आए हैं, केवल यहां पर नंद बाबा के पास में रहने से मोर मुकुट को खोल करके रख दिया, मोर मुकुट नहीं और वंश भी हाथ में नहीं रखा, और वो त्रिभंग ठाम नहीं, अब तो सिंह शावक जैसे हैं, अभी कल ही आज ही युद्ध करना है, कंस को परास्त करना है, इसलिए उनकी भाव जैसी सवासना। शुद्ध भक्तों रूप और सनातन गोस्वामी की, हमारे गोस्वामी की वासना कैसी थी, रूप मंजरी रति मंजरी की सवासना थी। भक्ति में अग्रसर होने पर जहां पर आसक्ति आएगी, आसक्ति के बाद में ये सवासना लाना ही भक्तों का प्रधान कार्य। ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझो जो कैसे आएगी। भरत महाराज आराधना कर रहे हैं, वो यज्ञ तप नहीं कर रहे थे, आराधना। आराधना माने क्या? मंत्र का, भगवत मंत्र का जप कर रहे थे और उनका ध्यान चिंतन कर रहे हैं। हठात उनके स्थान में हिरण ने प्रवेश किया और हिरण अपने दल में जाकर के मिल गया। अब वो जो इतना उसको प्यार करते थे, इतने दिनों से हिरण के चले जाने पर हिरण कहां गया, हिरण कहां, हिरण कहां, हिरण कहां गया। और उसी दिन उनका काल शाम को, रात में या शाम को, बस हिरण कहां चला गया। भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिले, गोपियां नहीं मिली, राधा जी नहीं मिली या नारायण नहीं मिले, ये भावना नहीं रही। आज उनका इतना जो तपस्या आराधना थी, कहां वो चली गई और हिरण कहां गया, हिरण कहां गया, हमारा जीवन वृथा गया, कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण के लिए इतनी चिंता नहीं, ये भूल गए। हम लोग भी ऐसा करते हैं कभी कभी, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जो वो सब छूट जाता है और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जिस काम के लिए आए थे घर का छोड़ करके, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, हाय हाय कृष्ण कैसे मिलेंगे, संतों का कैसे हम आदर करेंगे, ये सब बातें कब सुनेंगे, ये सब भूल जाते हैं। वासना वाली चीज खत्म हो गई, इनको देखो जो वो भगवान की चिंतन छोड़ करके हिरण की चिंता करने लगे, और मरते समय हिरण की याद आ रही और कुछ ही याद नहीं, और हुआ क्या, हिरण होकर के जन्म। ऐसे ही कोई ऐसी वासना हो, सब समय चिंतन करते करते कृष्ण को परिकरों का और कृष्ण का चिंतन कोई करे, और चिंतन करते 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 तन्मय हो जाए और मृत्यु आ जाए, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या जरूर होगा। वो यदि एक आदमी यदि चिंतन करके हिरण होता है तो हम क्यों नहीं ब्रज में जाकर के उसका जन्म होगा, जरूर होगा, निश्चित रूप में। किंतु ऐसा होए तब तो क्या, एक है ना कि जन्म जन्म जन मुनि जतन करान, क्यों नहीं आता। मृत्यु के समय दूसरी चिंताएं जाती हैं, क्योंकि उसमें आवेश नहीं है, सवासना नहीं किया गया। हम जो परिक्रमा अभी कर रहे हैं, अभी देखेंगे, जैसे कि अभी हम कहां कहां पहुंच रहे हैं, पाट में भी पहुंच जाएंगे, सेत बांद्रा में, अभी द्वारका में क्या होगा, वहां क्या होगा, यहां क्या होगा, कैसे रसोई बनेगी, क्या होगा, दिन भर उसी की चिंता। और यदि 10 बार 25 बार कर लिया ना, तो तुम छोड़ भी देगा तो वही चिंताएं आएंगी, वही सब। इसलिए ऐसा अनुकूल कार्य करना चाहिए, हमारी वासना पक्की और सब समय भगवत चिंतन हो, सब समय भगवत चिंतन, नहीं है तो गुरु जी का चिंतन हो, वैष्णव का चिंतन हो, हरि कथा का चिंतन हो, होते 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 निष्ठा से रुचि आसक्ति होने पर उसकी सवासना वैसी ही हो जाएगी, ऐश्वर्य भी दूर हो जाएगा। अभी इनकी वासना कैसी है, क्यों, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है, यहां पर माधुर्य भी है, माधुर्य क्या, कृष्ण तो वही किशोर है और किशोर रूप में ही लड़ रहे हैं, है किंतु अभी माता पिता बदल गए हैं, भाव बदल गया है, रूप बदल गया है, इसलिए ऐश्वर्य भाव आया। इसलिए यज्ञ पत्नियों का जैसा सुभाषना इनकी होने के वजह से ये कुछ ऐश्वर्य भाव देखती हुई और उनकी प्रशंसा कर रही है, क्या प्रशंसा कर रही है, पुण्यावत ब्रज भुवो जदन लिंग, ओहो संसार में यदि कोई धन्य है तब ब्रजभूमि ही धन्य है। इसलिए ब्रजभूमि धन्य है, यद आयं निलिंग बूढ़ा पुराण पुरुष वनचित्र माल्य गा पालयन सहबल कड़वायन, ये सब विशेषण किसका, पुराण पुरुष का, बूढ़ पुराण पुरुष का, ये सब उसका विशेष है, ब्रजभूमि धन्य है। जहां पर के कृष्ण ने, कृष्ण एक बालक के रूप में वहां पर है, किशोर रूप में है, किंतु इसलिए धन्य नहीं, बल्कि इसलिए धन्य है कि वहां पर गोपियां हैं, गोप गोपियां गाय इत्यादि है, उसमें विशेष करके ये गोपियां धन्य है जो कृष्ण से इतना प्यार करती हैं, इतना स्नेह करती हैं। आज आयंग, आयंग माने ऐसे, किसको, जो लड़ रहे हैं ना कृष्ण के लिए, बलदेव जी को छोड़ दिया, आयंग कहने से दो नहीं होगा, कृष्ण और बलदेव नहीं होगा ना, एक वचन है ना आयंग, तो आयंग ये दोनों लड़े दोनों के लिए नहीं हो करके ये कृष्ण कौन सा श्यामल जो रंग का है, निर्लिंग मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप धारण करके, गूढ़ जो अत्यंत निगूढ़ जिसका तत्व है, पुराण पुरुष, पुराण पुरुष माने क्या, सबसे इस विश्व का जिसे सृष्टि इत्यादि होती है वो कौन, श्रीमद्भागवत का पहला श्लोक जन्मादस्य यतः अन्नयादि तर्पः, वो जो पुराण है, श्रीमद्भागवत पुराण है ना, महापुराण, इसे श्रीमद्भागवत का जो प्रतिपाद्य कृष्ण है वो पुराण पुरुष, अथवा पुराण पुरुष माने इनसे और बढ़कर के पुराना कोई है नहीं, नित्य सनातन जो है वह पुरुष गूढ़ मनुष्य के रूप में यहां पर अवतरित हुआ है। कुछ लोगों की धारणा यह है कि ब्रह्मा निर्गुण है और पीछे से वो सगुण हुआ है, ब्रह्मा का आकार नहीं है, निशक्ति निराकार निरंजन अव्यक्त अनादि इत्यादि है, पीछे से वह ब्रह्म रूप धारण करके राम कृष्ण वामन इत्यादि के रूप में जगत में आविर्भूत हुआ है, और फिर जब जगत से चला जाएगा तो वो निराकार हो जाएगा, ऐसा मत समझो, अपने रूप को लेकर के ही जो अवतरित इस जगत में उतरते हैं उनका नाम अवतार होता है, तो वे गूढ़ जो हैं पूर्व पुरुष नित्य ही जो हैं, इस रूप में अपने रूप को इन्होंने जगत में प्रकाश किया है बस, वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य, वन के सुंदर सुंदर पुष्पों से लगी हुई बनी हुई वैजयंती माला जो गले से लेकर के पैरों तक झूल रही, चित्र ये अलका तिलक बहुत सुंदर रूप, पत्रभंग, पत्रभंग इत्यादि गालों पर कपोलों पर सुंदर सुंदर मकरी इत्यादि सब है, हाथों पर कंगन जैसा गेरू का रंग गोवर्धन का या कहीं का वो लगा रखा है, अद्भुत चित्र माल्य और गाह पालयन गायों का पालन करते हुए सहबल बल जी के बलदेव जी के साथ में कणयंश वेणु, कणयंश वेणु कणयंश बने बजाना, नूपुर भी हो सकता है कि बज रहे हों, हाथ के कंकण भी बज रहे हों, बरहा पीड़ा भिरामम मृगमध्य तिलकम कुंडलाकं तगंडम कंजाक्षम कंबुकंठम, इसके बाद वाला कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस्तक चले कौस्तुभम नाशाग्रे बरमक सुखम करतल वेणु करे कंकणम हरिचंदनम, जब चलते हैं तो नूपुर बजता होगा, हाथों के कंगन उसके बजते होंगे, और वेणु पर मधुर राग रागनी छेड़ते हैं, विक्रियांचति क्रीड़ियांचति और विक्रियांचति, कीड़ा करते हैं, कीड़ा मैंने सखाओं के साथ में कीड़ा कर रहे हैं, और विशेष रूप से अत्यंत गोपनीय जो लीलाएं हैं क्रीड़ा जो है वो और कहीं जो कर रहे हों कृष्ण विक्रियांच राश इत्यादि विक्रियांच, ये सब लीलाएं हैं जो कर रहे हैं, गिरित्र जिनके चरण कमल, गिरित्र माने महेश शंकर और रमा, रमा के द्वारा अर्पित है,
जिनके चरण कमल।
ये जहां पर है वो ब्रजभूमि धन्य है। गिरित्र माने यहां और भी होगा, गिरी माने होता है श्रृंग, सिंह कौन सा सिंह, गिरिराज गोवर्धन। समस्त गिरियों में श्रेष्ठ गिरिराज है, क्यों? क्योंकि सब समय कृष्ण के चरण कमलों का की सेवा करने का उनको सुयोग मिलता है, इसलिए गिरिराज। यही नहीं, गायों की चरण सेवा, बछड़ों की चरण सेवा, सखाओं की चरण सेवा, गोपियों की चरण सेवा, ये सब करने का उनको सुयोग सब समय मिलता है। यहां तक कि और सखाओं को खेलने के लिए क्रीड़ा भूमि, उनको पानी पीने के लिए कुसुम सरोवर, मानस गंगा इत्यादि, ये सब नदियां सरोवर कमल के फूलों से घिरे एकदम फूले हुए, सब चारों तरफ में ये सब देते हैं। और क्या, जव, जव माने क्या, ये अन्न, सुंदर सुंदर कोमल कोमल घासें कृष्ण के लिए तिलक रचना करने के लिए, पानी पीने के लिए आम और कटहल और ये सब चीजें हैं, बड़े सुंदर सुंदर मधुर फल और उनके रस, इनके और सखाओं को जो प्रदान करने वाले ये जो हैं कौन, ये गिरिराज। वहां पर गिरित्री रमार्चित, अरे वहां पर बंद कर दो बस पर हो जाएगा, गिरित्री रमार्चिता, और भी गिरी के ऊपर में गिरिराज गोवर्धन पर, यहां पर रमा माने पहले तो लक्ष्मी ले लो, रमार्चित रमा के द्वारा और की, और फिर दूसरा अर्थ लो समर सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका, है ना, वो क्या देविंग कृष्णमयी राधिका परदेव परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहि, सर्व लक्ष्मीमयी कौन है ये, श्रीमती राधिका जी। गिरित्र गिरी पर ये राधा जी के द्वारा अर्चित, अथवा ये भी अर्थ हो सकता है कि गिरी के ऊपर में गिरित्र गिरी के ऊपर में राधा जी की अर्चना करने वाले, ये भी अर्थ हो सकता है। ऐसे जो ब्रज है वो धन्य है, यहां पर कह रही हैं कि वो किंतु गुड़ पुराण पुरुष हैं, बंद कर क्यों नहीं कर देता पूरा, हाँ तो नीचे वो दरवाजा बंद कर देता तो ठीक हो जाता, कम आता सब, दरवाजा बंद करा हो तो क्या कर रहा था गिरी। और भी बहुत से यहां पर ये करें उनकी सभा, ऐसे कृष्ण की चिंता तो कर रही हैं, चिंता कृष्ण की कर रही हैं, किंतु जगपत्नियों की वासना के लिए क्यों कहा, इसलिए कि वो जान रही हैं निर्लिंग मनुष्य के रूप में, आप कुछ कहेंगे मत, ए आ जाओ बैठ, ये गुड़ पुराण पुरुष हैं, पर ब्रह्म हैं, ये मनुष्य के वेश में यहां पर आए हैं, इसलिए उनकी धारणा क्या हुई, ये पर ब्रह्म है, छिपे हुए वेश में नंद बाबा के पुत्र के रूप में आए हुए हैं या देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं, इसलिए उनकी धारणा क्या हुई, ऐश्वर्य भाव, इसलिए ये कह रही हैं। किंतु गोपियों की चिंता करेंगे, गोपियां धन्य है क्योंकि ब्रज में वो हैं, और वो क्या देखती हैं, ऐसे देखते हैं वो उनको पुराण पुरुष पर ब्रह्म अनादि सर्वशक्तिमान, ये सब उनको नहीं देखती है, इसलिए वो धन्य है। गुप्त तप हिमाचरण जमदमुष्म रूप, ओ गोपियों ने कौन सी तपस्या की, हाँ मैं जानती तो हम भी वही तपस्या करती जो कृष्ण को इस रूप में देखा, कैसे किस रूप में देखा, राधा जी के द्वारा अर्चित पद कमल को देखा, गिरिराज में क्रीड़ाओं को विशेष करके क्रीड़ाओं को करते हुए गोपालों के साथ में गायों के साथ में क्रीड़ा करते हुए कड़यंश वेणु ये देखा, आज उनकी वेणु कहाँ है, वो बेश कहाँ गया, वो भी बेश नहीं है, यहाँ गोपियां ही यथार्थ में धन्य है। उन्होंने कौन सी तपस्या की थी गोप्यस्तपः किम् आचरण, कौन सा आचरण किया, कौन सी तपस्या की, कौन सा क्या किया, यदि हम जानती तो वैसे ही हम आराधना करती और हम भी उनको वैसे ही पाती। तब हमारा यह जो उनके प्रति ये भाव है कि ये परब्रह्म है, पुराण पुरुष है, ये सब दूर हो जाए। और उनको क्या देखती, ये यशोदा जी के पुत्र हैं। शंका होती है यशोदा जी के पुत्र हैं या नहीं है? क्या है वो गोपिका, नखल गोपिका नंदन, गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म, संदेह करती हैं गोपी, नखल गोपिका है? कह रही हैं आप निश्चित रूप में यशोदा जी के पुत्र नहीं हैं। मतलब क्या, आप यशोदा जी के पुत्र हैं किंतु हमें शंका हो कि आप यशोदा जी के पुत्र हैं कि नहीं, क्यों, यशोदा जी जैसे कोमल हृदय के नहीं हैं, हमें छोड़ करके चले गए इसलिए बड़े कठोर हृदय के, तो आप यशोदा जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये शंका करते हैं। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं ओहो गोपियों को देखो ये कैसी तपस्या की, उनमें ब्रह्म भाव नहीं, यदि ब्रह्म होता तो कहते जी हमारा नूपुर कहीं गिर गया, ले आओ जल्दी से, और कहते जी हमारी सेवा करो, और कृष्ण अपने पीताम्बर से उनके मुखड़े को पोंछ रहे हैं। कृष्ण को भूख लगती है ब्रज में, कभी भी देवकी से, बस देवकी जी से नहीं मांगा कुछ खाने के लिए, और यहां पर अरुणी मैया यशोदा मैया जी से प्रतिदिन मक्खन और मिश्री के लिए रोते हैं बैठ करके, यदि मथने में देरी हो जाती है मंथन करने में, नया मक्खन देने में, तो वो कृष्ण ललक करके रोते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे, जैसे सूरदास के पास में बैठे हैं ना, ऐसे मैया अभी मथेगी और मक्खन देगी कैसा सफेद चांदी का जैसा है? और मैं इसलिए बैठ करके मैया को देख रहे हैं, मैया को मथेगी तो देगी, बैठे रहते हैं, मतलब वहां पर भूख लगती। देवकी देवी को यह खीज है कि आज तक इतने दिन हो गए हमसे कुछ खाने के लिए नहीं मांगा, खिलाता कौन है वहां उनको, रोहिणी जी खिलाती है, क्योंकि अभ्यास है ब्रज का, मैया से लज्जा आती है बोलने में, मैया मैया नहीं कहते, हम लोग पिताजी को चाचा जी कहते थे, तो किसी ने कहा जी भाई चाचा जी क्यों कहता है, तो पिताजी कहो, तो हम लोगों को लज्जा आती। यहां पर सुनते हैं कोई कोई अपनी मैया को बहू कहता है, भाभी कहते हैं, भाभी मैया, हमने कहा जी क्या कर रहे हैं, भाभी क्यों कहता है, कोई कोई बहू भी कहते हैं, बहू बहू, और अधिकांश यहां पर तो भाभी भाभी कहते हैं मैया, हमने कहा जा भाई ऐसा मत करो, तो क्या कहें, सुनते सुनते अभ्यास ऐसा हो गया जी मैया को हम लोग भाभी कहते हैं, अब मैया कहने में लज्जा आती है। ऐसे ही कृष्ण को, देवकी को मैया, और बाप को वसुदेव जी को पिताजी कहने में बड़ी लज्जा आती है, नहीं कहते, और उनको मैया कहने से बस यशोदा जी की याद आती है। तो गुप्त तपः किम् आचरत्, गोपियों ने कौन सी ऐसी आराधना की, यदि मुझे मालूम हो जाए हमें आज ही हम यहां से जाकर के वही तपस्या करेंगे वही आचरण, ये देखो यही लोभ है ना, गोपियों ने कैसी आराधना है। अब यदि हम लोगों को ऐसे भावना आए कृष्ण की कथाओं को सुन करके ऐसा लोभ हो, ओहो हम कैसे कृष्ण की इस रूप में सेवा करते हैं, ये मठ में रहने का या मठ में हरि कथा सुनने का ये अभिप्राय है ना, जो वो लोभ उत्पन्न हो, और यदि लोभ नहीं उत्पन्न हुआ तो फिर समस्याएं, लड़ाई झगड़ा इधर उधर कोई भी बचा नहीं सकता, इसलिए ये सी भावना रहना चाहिए, यही है जाकर के ये सीखेंगे ये लोभ उत्पन्न हमारे अंदर में हो उसमें संसार की सारी बातें भूल जाएंगे, संसार की कामनाएं भूल जाएंगे, अन्य अभिलाष शून्य हो जाएंगे, और यदि नहीं हुआ तो तब फिर क्या मठ बास, तभी अस्पताल है, इस अस्पताल में हजारों रोगी, कोई कैंसर टीबी, किसी का पैर टूट गया है, किसी के आंख में कुछ गड़बड़ी हो गई, कई पैर में, किसी के पेट में, किसी में कुछ, हजारों तरह के, दिल्ली में जो बड़ा अस्पताल है ना उसमें लाख डिपार्टमेंट है, अमेरिका में तो और लाखों लाखों डिपार्टमेंट, और उसके विशेषज्ञ विशेष करके, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, सब तरह का स्पेशलिस्ट है। तो मठ एक अस्पताल है, बहुत से रोगी भर्ती हैं, किंतु रोगी यदि समझ ले कि मैं डॉक्टर हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। रोगी को यह समझना चाहिए कि हम रोगी हैं, हमारी चिकित्सा हो रही है। किंतु कोई ये कहे रोगी जब मैं ही डॉक्टर हूं, हमको ये दवाई दीजिए और मैं यही दवाई लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा, और मैं नहीं देंगे, हम बाहर से ले आएंगे वही दवाई हम लेंगे, तब तो हो गया ना मामला। इसलिए पहले विशेषज्ञ तो वो बनो, बात सुनो तो भजन होगा, और नहीं तो ये जन्म अपने मन से चलने से ऐसा ही होगा। इसलिए यहां से सीखने की जरूरत है, प्रत्येक चीजों को सीखो, वैसा करो, तब तो फिर भजन होगा, और नहीं तो फिर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसे ही हो जाएगा। आए थे हरि, हम लोगों की अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। कृष्ण भक्त बहुत कम जगत में है, रेयर, चाहे कोटिस्वपी महाम, कोटियों कोटियों में से एक बिरले। क्यों लिखा गया? हम लोग तो इतना भजन कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, लाल कपड़ा है, तिलक है, सब कुछ है, कुछ इच्छा भी है, किंतु हम बात नहीं मानते, न महाप्रभु की बात मानते हैं, न भागवत की मानते हैं, न कुछ बात मानते हैं। समस्या किस चीज की है? संसारिक चीजों की हमारी समस्या है, परमार्थ के लिए कोई समस्या किसी को देन नहीं देखे। कोई ये नहीं कह करके आता कि हमारा ये परमार्थ में ये गड़बड़ी चल रही है, हम क्या करें, ये तो कोई नहीं, बस संसार बातों का। वैष्णवों को, शुद्ध वैष्णवों को, प्रहलाद महाराज जी की इसकी कोई समस्या नहीं है, ये पिताजी विष दे रहे हैं कि सांप से कटवा रहे हैं, कोई समस्या थी? कोई समस्या, वो तो सर्वत्र ही प्रभु को देख रहे हैं और सब में प्रभु